معزز نابینا خواتین حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ ون ہے۔ معزز نابینا خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عمران سیریز کا ناول گولڈن کرسٹل۔ یہ گولڈن جوبلی نمبر ہے۔ اس کے مصنف ظہیر احمد ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف۔ زمین سے ہزاروں نوری سال کی دوری پر چمکتے ہوئے اور آگ برسانے والے سورج کے گولے میں غیر معمولی طوفان اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سورج کے مختلف حصوں میں لاوا ابلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور وہاں جیسے ہزاروں ایٹم بم ایک ساتھ بلاسٹ ہو رہے تھے، جس سے سورج کے ہزاروں میٹر اونچے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ زبردست دھماکوں کی شدت سے سورج پر اس وقت قیامت سی برپا تھی۔ سورج کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہوگا جہاں خوفناک دھماکے نہیں ہو رہے تھے۔ ان دھماکوں سے سورج میں پگھلا ہوا لاوا بھی ہر طرف اڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اور تپش میں کروڑوں گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ سورج چونکہ کائنات کا گرم ترین سیارہ تھا، اسی لیے سیارے کے نزدیک کوئی دوسرا سیارہ موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ کائنات کے تمام سیارے سورج سے لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر تھے، جو سورج کی روشنی سے توانائی اور روشنی حاصل کرتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ سورج کی تپش اور روشنی میں کروڑوں گنا اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود سیارے بھی سورج پر آنے والے طوفان کا شکار بنتے جا رہے تھے۔ سورج پہ ہونے والے دھماکوں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پہاڑوں کے بڑے بڑے شہاب ثاقب انتہائی طوفانی رفتار سے ان سیاروں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چونکہ سورج پر اٹھنے والی قیامت کا یہ سلسلہ کئی روز سے جاری تھا، اس لیے اب تک دھماکوں سے سورج کے بے شمار پہاڑ بھی تباہ ہو چکے تھے اور ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں کئی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ سرخ پہاڑ طوفانی رفتار سے مدار میں موجود دوسرے سیاروں کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے اور ان میں سے کچھ شہاب ثاقب جن کی لمبائی اور چوڑائی 50-50 کلومیٹر تھی، وہ ان سیاروں سے ٹکرا گئے تھے، جس سے خلا میں اس قدر خوفناک دھماکے ہونا شروع ہو گئے تھے کہ ان شہاب ثاقبوں نے مدار کے بے شمار سیاروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اور اب وہ سیارے بھی بکھر کر طوفانی رفتار میں گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج کے جن سرخ شہاب ثاقبوں نے مدار کے سیاروں کو تباہ کیا تھا، وہ سیارے ایسے مدار میں موجود تھے جو شمسی دائرے سے ہٹ کر تھے، اور یہ سیارے ابھی دنیا میں دریافت بھی نہیں کیے گئے تھے۔ چونکہ سورج پر ہونے والی تباہی کا سارا اثر سورج کی افقی سمت میں تھا، اس لیے ابھی اس تباہی کا رخ نظام شمسی کی طرف نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ سورج کی تپش اور روشنی حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی، اسی لیے شمسی دائرے کے افقی طرف موجود سیاروں کی روشنی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ سورج پر ہونے والی یہ تباہی قدرتی تھی، جس سے سورج میں بہتے ہوئے لاوے میں اس قدر طغیانی آ گئی تھی کہ الامان، اگر اس لاوے کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ گرتا تو اس لاوے کی گرمی سے زمین موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتی۔ سورج کے گرد دھوئے کی دبی تہ سی پھیل گئی تھی، لیکن چونکہ سورج پر بار بار دھماکے ہو رہے تھے اور لاوا اچھل رہا تھا، اسی لیے دھوئے کے سیاہ بادل بھی مدار میں روشنی اور تپش کم کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک سورج پر ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے سورج بری طرح سے لرز اٹھا تھا۔ اس دھماکے سے سورج پر بہنے والے نہ صرف لاوے کا سمندر اچھل پڑا تھا، بلکہ وہاں موجود ہزاروں میٹر اونچے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے۔ اس دھماکے سے اس قدر تیز روشنی پیدا ہوئی جس نے ایک لمحے کے لیے جیسے ساری کائنات میں روشنی بکھیر کر رکھ دی۔ یہ دھماکہ اس بار نظام شمسی کے سرکل میں ہوا تھا، جہاں سے آگ اور لاوے کا سمندر نکل کر سورج سے لاکھوں کلومیٹر تک پھیل گیا تھا، اور پھر اس لاوے نے ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کی اور بجلی کی رفتار سے بھی ہزاروں گنا تیز رفتاری سے فرنٹ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس طوفان میں آگ میں لپٹے سینکڑوں کلومیٹر لمبے چوڑے پہاڑوں کے ٹکڑے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ طوفان جیسے جیسے سورج سے دور ہوتا جا رہا تھا، اس کی رفتار میں انتہائی تیزی آتی جا رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کا یہ خوفناک طوفان ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ اس طوفان نے آسمان پر ایک نیا سورج سا روشن کر دیا تھا، जिसकी रोशनी सूरज से कहीं ज्यादा तेज थी। सुर्ख रंग के पहाड़ और लावा मुसलसल निजामे शमसी में फैलता हुआ दिखाई दे रहा था और इस तूफान का फैलाव कमोवेश 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा था। तूफान तेजी से शमसी मदार में फैलता जा रहा था। चूंकि इस तूफान की रफ्तार इंतहाई तेज थी और पीछे से आने वाले पहाड़ जैसे बड़े बड़े शहाबे साकिब एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से मदार में हजारों एटम बमों जैसे खौफनाक धमाके भी हो रहे थे। इन होने वाले धमाकों से हर तरफ चकाचौंध रोशनी फैल जाती थी। रोशनी का ये तूफान शमसी मदार में घूमने वाले सैयारों के इर्द गिर्द एक बड़े दायरे की शक्ल में फैलता जा रहा था। चूंकि ये सारा आग का तूफान था, इसलिए सुर्ख पहाड़ों के तबाह होने के बावजूद उसकी गर्द सुर्ख इमाइल थी और आग की ये सुर्खी जहां जहां से गुजरती जा रही थी वहां अपना रंग छोड़ती जा रही थी, जिससे खला का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुर्ख हो गया था। ये तूफान इंतहाई तेज रफ्तारी से हजारों नूरी सालों का फासला दिनों में तय करता हुआ दिखाई दे रहा था। चूंकि तूफान खला में हर तरफ फैलता जा रहा था, इसीलिए इस तूफान का रुख मुख्तलिफ सिमतों की तरफ हो गया था। एटम बमों की तरह फटने वाले शहाबे साकिबों ने खला में इस कदर आलूदगी पैदा कर दी थी कि शमसी मदार में घूमने वाले तमाम सैयारे इसकी जद में आ गए थे, जिससे हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी छाई हुई थी। सूरज के इस खौफनाक तूफान का एक बहुत बड़ा हिस्सा शमसी मदार के वस्त में जा रहा था। इस तूफान में हजारों की तादाद में पहाड़ों जैसे शहाबे साकिब मौजूद थे, जो खला में सुर्खी की बड़ी बड़ी शुआएं फेंकते हुए ठीक अर्थ की जानिब बढ़ रहे थे। सूरज में पैदा होने वाले इस तूफान के बारे में एक्रीमिया का खलाई रिसर्च करने वाले इदारे को बहुत पहले इत्तला हो चुकी थी, इसलिए खलाई रिसर्च सेंटर में इन दिनों बेहद गहमा गहमी दिखाई दे रही थी। सूरज से निकलने वाले इस खौफनाक तूफान को देखने के लिए बेशुमार सैटेलाइट काम कर रहे थे, जो इस तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा तस्वीरें खींचकर अर्थ पर मौजूद एक्रीमी खलाई रिसर्च सेंटर को भेज रहे थे। इसके अलावा एक्रीमिया के माहिर फलकियात ने भी अपनी दूरबीनें संभाली हुई थी, जिनसे वो नए नए सैयारों को दरियाफ्त करने में लगे रहते थे। इन सब की निगाहें भी इस वक्त सूरज के इस तूफान पर जमी थी, जो बगैर किसी तरफ मुड़े अर्थ की जानिब बढ़ा चला आ रहा था। इस तूफान की रफ्तार का अंदाजा लगाते हुए माहिर फलकियात ने अपने अपने तौर पर पेशन गोईयां करनी शुरू कर दी थी कि सूरज का ये तूफान अगर इसी रफ्तार और इसी सिमत में बढ़ता रहा तो ये अगले 3 माह बाद ठीक चांद और फिर अर्थ से टकरा जाएगा। इस तूफान की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि 3 माह बाद भी इसके फैलाव और रफ्तार में किसी कमी का कोई इम्कान नहीं था। पूरी दुनिया को सूरज से आने वाले इस खौफनाक तूफान के बारे में बताया जा रहा था और दुनिया भर के अखबारात में ये शेयर सुर्खियां लग रही थी कि अगले 3 माह बाद पूरी दुनिया खौफनाक तबाही की लपेट में आने वाली है। सूरज के इस तूफान ने अगर अपना रुख ना बदला तो चांद के साथ इस तूफान का अर्थ से टकराना नागुजीर होगा, और अगर ये तूफान जमीन से टकरा गया तो फिर पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस तूफान में 1 करोड़ से भी ज्यादा एटम बमों की ताकत बताई जा रही थी, जो जमीन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने के लिए काफी थी। यही वजह थी कि इन दिनों पूरी दुनिया में खौफ और दहशत का आलमतारी था। मजहबी और गैर मजहबी पेशवाओं ने दुनिया के तबाह होने के बारे में बाकायदा ऐलानात करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से हर खासवाम को अपनी जिंदगी इंतहाई महदूद और अर्जा होती हुई मालूम हो रही थी। एक्रीमिया के खलाई रिसर्च सेंटर में तो दिन रात इस तूफान को अर्थ की तरफ आते हुए देखने और इस तूफान को अर्थ पर तबाही फैलाने से रोकने के बारे में बड़ी बड़ी और अहम मीटिंग्स की जा रही थी। इन मीटिंग्स में पूरी दुनिया के एटमी मुमालिक को शिरकत की दावत दी गई थी ताकि वो इस तूफान का रुख बदमोड़ने का मशवरा दें। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन सूरज से निकलने वाले तूफान की न रफ्तार में कमी आ रही थी और न ही उसका रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से दुनिया में खौफ और दहशत में इजाफा होता जा रहा था, और चूंकि सूरज का ये गर्म और सुर्ख तूफान बड़े बड़े पहाड़ों के शहाबे साकिबों और लावों का बना हुआ था और इसका रुख भी अर्थ की जानिब ही था, इसीलिए अर्थ पर गर्मी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा हो गया था। जिन इलाकों में दर्जा हरारत गर्मियों के दिनों में भी मनफी रहता था, इन इलाकों में भी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मुंजमिद ग्लेशियर और पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ भी पिघलना शुरू हो गई थी। मौसम गर्मा के आगाज में ही गर्मी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो गया था और जमीन पर आए दिन नए से नए तगैरात पैदा होते जा रहे थे। कभी मौसम इंतहाई मोतदिल हो जाता था, कभी हर तरफ सियाह बादल छा जाते थे और फिर धुआंधार बारिश भी शुरू हो जाती थी। उसके बाद अचानक बादल छट जाते और सूरज इस कदर कहर बरसाने लगता कि जिससे जमीन तंदूर की तरह तपना शुरू हो जाती और जानवर जानदार को सांस लेना भी दूभर हो जाता था। दुनिया पर सूरज से आने वाले खौफनाक तूफान का खौफ किसी तरह से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तूफान की रफ्तार और उसके रुख पर नजर रखने के लिए पाकेशिया के सैटेलाइट स्टेशन पर भी काम हो रहा था। कई माहिर फलकियात इस तूफान पर नजर रखे हुए थे। जमीन की तरह तरफ आते हुए इस तूफान के रुख में अब खातिर ख्वाह तब्दीली होना शुरू हो गई थी। कभी तूफान दाएं तरफ मुड़ जाता था और कभी बाएं तरफ। इस तरह तूफान की ताकत में कमी आ रही थी। दाएं बाएं होने वाले तूफान के कई शहाबे साकिब इधर इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन अब भी बेशुमार शहाबे साकिब ऐसे थे जो आग की लिपटों में घिरे हुए अर्थ की जानिब बढ़े चले आ रहे थे। एक्रीमी माहिर फलकियात और खलाई साइंसदानों ने इस तूफान के एक सबसे बड़े शहाबे साकिब को जब मुसलसल अर्थ की तरफ आते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये शहाबे साकिब अपना रुख नहीं बदलेगा और ये सीधा अर्थ से टकरा जाएगा। इस शहाबे साकिब की लंबाई चौड़ाई भी 100 किलोमीटर जितनी थी, जिसके अर्थ से टकराने का मतलब अर्थ का मुकम्मल खात्मा था। साइंसदानों के कहने के मुताबिक इस एक शहाबे साकिब में भी हजारों मेगा एटम बमों की ताकत थी, जो न सिर्फ इंसानी आबादियां मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता था बल्कि समंदरों का पानी भी शहाबे साकिब की वजह से भाप बनकर उड़ जाता और अर्थ का नामो निशान तक खत्म होकर रह जाता। शहाबे साकिब की गिर्द छाया हुआ तूफान नीचे आते आते खत्म होता जा रहा था, लेकिन इस शहाबे साकिब में न जाने ऐसी क्या बात थी कि वो अर्थ की तरफ से सिमत बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। साइंसदानों के मुताबिक ये शहाबे साकिब, जिसे डेथ स्टोन कहा जा रहा था, अगले 3 से 4 रोज में अर्थ से टकरा सकता था। एक्रीमिया, क्रांस, शोग्रान, रूसिया और इस जैसे कई सुपर पावर्स ने मुश्तरका तौर पर मेगा पावर मिसाइल स्टेशन तैयार कर लिए थे। इन लॉन्चरों में 100-100 फीट लंबे मिसाइल डाले गए थे। साइंसदानों का ख्याल था कि अगर सूरज से आने वाले तूफान और खास तौर पर डेथ स्टोन ने अपना रुख न बदला तो खला के मखसूस हिस्से में डेथ स्टोन के आते ही वो इस पर अर्थ से एक साथ मिसाइल छोड़ देंगे, ताकि इस स्टोन को अर्थ के कशिश सकल में दाखिल होने से पहले ही तबाह कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो 100 किलोमीटर लंबे और 100 किलोमीटर चौड़े डेथ स्टोन के खला में ही टुकड़े हो जाते और इस तरह इस सालिम पहाड़ के अर्थ से टकराने का खतरा टल जाता। लेकिन इसके बावजूद डेथ स्टोन के टुकड़े, चाहे वो कंकरियों की ही शक्ल में क्यों ना हो, अर्थ पर जिस मुल्क पर भी गिरते वहाँ हर तरफ खौफनाक तबाही फैल जाती, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। दुनिया के साइंसदान एक दूसरे से मुसलसल रबते में थे और उन्होंने एक दूसरे से घड़ियां मिलाकर जमीन पर गिरने वाले डेथ स्टोन का बाकायदा काउंट डाउन शुरू कर दिया था। मुत्तफिका तौर पर तमाम साइंसदानों और माहिर फलकियात का अंदाजा था कि अगर इस डेथ स्टोन ने अपना रास्ता ना बदला तो अगले 72 घंटों के बाद डेथ स्टोन का अर्थ से टकराव हो सकता था। पूरी दुनिया का मीडिया अब डेथ स्टोन के बारे में चीख रहा था। डेथ स्टोन के मुसलसल नीचे आते रहने की वजह से दुनिया की फजा में दहशत और खौफ का ये आलम था कि हर खासो आम अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादतें करने लगा था। गिरजाघर, माबद और मस्जिदों के साथ साथ हर घर में खैर आफियत और दुनिया को महफूज रखने की दुआएं मांगी जा रही थी। मिसाइल सिस्टम से डेथ स्टोन को तबाह करने का चूंकि मुश्तरका तौर पर कमांड ऑफ द हेड एक्रीमिया को बनाया गया था, इसीलिए इस वक्त तमाम मिसाइल स्टेशनों के रास्ते एक्रीमिया के खलाई सेंटर से थे और कमांड ऑफ द हेड एक्रीमिया के मार्शल डरेले की सुपुर्द की गई थी, जो इस सारे ऑपरेशन की बजाते खुद निगरानी कर रहा था। एक्रीमी खलाई सेंटर में इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं थी। हर वक्त हर तरफ कतारों में बड़े बड़े नामवर साइंसदान कंप्यूटराइज मशीनों के सामने बैठे हुए थे। इनकी कंप्यूटर स्क्रीनों पर सुर्ख रंग के आग के पहाड़ों की तस्वीरों के साथ साथ इन तमाम मिसाइल स्टेशनों के मंजर भी दिखाई दे रहे थे, जहां से एक साथ और एक ही वक्त में डेथ स्टोन पर मिसाइल फायर किए जाने वाले थे। हॉल में दीवारों के चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थीं, जिन पर खलाई मंजर और आग का बना हुआ पहाड़ नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था। मार्शल ड्रेले के कॉलर पर एक माइक लगा हुआ था, जिससे वो चीख चीख कर वहां मौजूद अफराद को ब्रीफिंग देने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी करता जा रहा था। उसकी तेज और चीखती हुई आवाज हॉल की दीवारों में छुपे हुए स्पीकरों से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। तमाम बड़ी स्क्रीनों के नीचे बड़े बड़े डिजिटल क्लॉक्स लगे हुए थे, जिन पर काउंटडाउन हो रहा था, और इन डिजिटल क्लॉक्स के मुताबिक डेथ स्टोन के अर्थ से टकराने में सिर्फ 10 घंटों का वक्त बाकी रह गया था। 10 घंटों के बाद डेथ स्टोन जमीन के कशिश शक्ल में दाखिल हो जाता, और फिर उसके जमीन से आकर टकराने में चंद ही मिनट काफी होते। इस खलाई सेंटर में होने वाली कार्रवाई पूरी दुनिया के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, इसीलिए सब पूरी दुनिया की नजरें अपने अपने टीवी स्क्रीनों पर जमी हुई थीं, जिनमें एंकर्स अपने वसाइल के मुताबिक नई से नई मालूमात फराहम कर रहे थे। इसी वक्त हॉल का दरवाजा खुला और एक रीमी सदर तेज तेज चलता हुआ अंदर आ गया। इसके अंदर आते ही हॉल में मौजूद अफराद इसके एहतराम में उठ खड़े हुए। कैरी ऑन कैरी ऑन, एक रीमी सदर ने तेज आवाज में कहा, तो वो सब अपनी नशिस्तों पर बैठकर एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। सदर को देखकर मार्शल ड्रेले और एक्रीमिया के कई आला ओहदेदार उनकी जानिब बढ़े। मार्शल ड्रेले ने सदर को सल्यूट किया, क्या पोजीशन है मार्शल? सदर ने दीवारों पर लगी हुई स्क्रीनों की जानिब देखते हुए मार्शल ड्रेले से मुखातिब होकर पूछा। सदर के लहजे में बेपनाह तशवीश थी। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है जनाब प्रेसिडेंट, हमने काउंट डाउन क्लॉक्स लगा दी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से डेथ स्टोन अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, इससे लगता है कि ये 10 घंटों से पहले ही अर्थ तक पहुंच जाएगा। मार्शल ड्रेले ने कॉलर में लगा हुआ माइक ऑफ करते हुए कहा, ताकि उसकी आवाज हॉल में और नशरियाती रापते से दुनिया में ना सुनाई दे सके। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या किसी तरह आप डेथ स्टोन को अर्थ की तरफ आने से रोक नहीं सकते? सदर ने गुस्सीले लहजे में कहा। हम कोशिश कर रहे हैं जनाब, हमारे साथ 7 मुल्कों से राबते हैं, जिनके मिसाइल स्टेशन खला में मिसाइल फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि डेथ स्टोन अभी हमारी रेंज से बाहर है, इसीलिए हम अभी मिसाइल फायर नहीं कर सकते। जैसे ही डेथ स्टोन हमारी रेंज में आएगा, हम 7 मुल्कों से एक साथ मिसाइल फायर करा देंगे। इन मिसाइलों में इस कदर धमाका खेज मवाद भरा हुआ है कि अगर मिसाइल्स ने टारगेट को हिट किया तो टारगेट खला में ही रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा। मार्शल ड्रेले ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक टारगेट को रेंज में आने में अभी कितना वक्त है? एक्रीमी सदर ने पूछा। 2 घंटे, अगले 2 घंटों में टारगेट हमारी रेंज में होगा जनाब, मार्शल ड्रेले ने जवाब दिया। जिन मिसाइलों से तुम डेथ स्टोन को तबाह करना चाहते हो, इससे डेथ स्टोन तबाह तो हो जाएगा, लेकिन क्या डेथ स्टोन का तूफान अर्थ की तरफ आने से रुक जाएगा? ऐसा न हो कि डेथ स्टोन तबाह होने के बावजूद तूफान बनकर अर्थ से आ टकराए, ऐसी सूरत में भी तो अर्थ खत्म हो सकती है, एक्रीमी सदर ने कहा। यस सर, इस खतरे की भी चांस है, लेकिन इसके बावजूद हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जिस तरह डेथ स्टोन को तबाह करने के लिए 7 मुल्कों से 1,000 से जायद मिसाइल फायर किए जाएंगे, इसी तरह हमारे अलावा 2 मुल्क ऐसे भी हैं जिनके पास प्रेशर मिसाइल मौजूद हैं। टारगेट हिट होते ही हम खला में प्रेशर मिसाइल भी फायर कर देंगे, जो तूफान को पीछे की तरफ धकेल देंगे, और इन प्रेशर मिसाइलों का हमें ये फायदा होगा कि डेथ स्टोन के टुकड़े पूरी खला में भी फैल जाएंगे और अर्थ उससे महफूज हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि तूफान का कुछ हिस्सा अर्थ की तरफ आ जाए। अगर इस तूफान का रुख हमारी तरफ हुआ तो हम इस पर मजीद प्रेशर मिसाइल बरसा कर इस तूफान को फजा में ही खत्म कर देंगे, मार्शल ड्रेले ने कहा। और अगर इस तूफान का रुख किसी और बर्रे आजम की तरफ हुआ तो फिर क्या होगा? सदर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। तब फिर जिस मुल्क पर वो तूफान गिरेगा तो वो मुल्क मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद हो जाएगा, मार्शल ड्रेले ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसका मतलब है कि इस कदर इंतजाम के बावजूद डेथ स्टोन अर्थ के किसी न किसी हिस्से पर तबाही जरूर फैलाएगा। क्या तुम बता सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो तूफान किस बर्रे आजम और किस मुल्क की तबाही का मौजिब बनेगा? एक्रीमी सदर ने परेशान होते हुए कहा। मैंने इस सिलसिले में तमाम साइंसदानों और माहिर फलकियात से मुशावरत की है, लेकिन उनका कहना है कि इस सिलसिले में इस वक्त तक कुछ कहना मुमकिन नहीं, जब तक कि ब्लास्टिंग मिसाइलों से डेथ स्टोन को टारगेट नहीं कर लिया जाता। तबाह होने वाले डेथ स्टोन का मलबा खला में फैल कर किस रुख पर जाता है, इसके बारे में कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मार्शल ड्रेल ने कहा। तो क्या मैं ये तस्वर कर लूँ कि डेथ स्टोन का तूफान क्रीमिया और खासतौर पर विलिंगटन पर भी गिर सकता है, क्रीमी सदर ने जबड़े भींचते हुए कहा। यस सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर इस तूफान का रुख एक्रीमिया की किसी भी रियासत की तरफ हुआ तो हम इस तूफान पर मजीद प्रेशर मिसाइल फायर कर देंगे जिससे तूफान का जोर 90% तक कम हो जाएगा, और अगर इस तूफान का सिर्फ 10% हिस्सा एक्रीमिया पर गिरा तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर ये तूफान एक्रीमिया की किसी रियासत की गुंजान आबादी वाले इलाके पर गिरा तो वो आबादी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, मार्शल ड्रेल ने कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो इस तूफान का 1% भी एक्रीमिया की किसी रियासत पर नहीं गिरना चाहिए, मुमकिन हो सके तो इस तूफान को किसी और बर्रे आजम की तरफ मोड़ दो। तूफान फौरी तौर पर तो नीचे नहीं आएगा, अर्थ से टकराने से पहले इस तूफान को कशिश सकल में दाखिल होना पड़ेगा, और जैसे ही तूफान कशिश सकल में दाखिल हो गया तो तुम्हें इस बात का फौरी इल्म हो जाएगा कि तूफान किस बर्रे आजम पर गिरेगा। अगर तूफान का रुख एक्रीमिया बल्कि एक्रीमिया के हामी मुमालिक की तरफ भी हुआ तो इस तूफान की तरफ जिस कदर प्रेशर मिसाइल हो फायर करते जाओ, और इस तूफान से एक्रीमिया और उसके दोस्त मुमालिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एक्रीमी सदर ने कहा। ओके मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं मजीद प्रेशर मिसाइलों को लॉन्चिंग के अहकाम दे देता हूँ। इस बार मैं मूविंग लॉन्चर तैयार कराता हूँ ताकि तूफान का रुख एक्रीमिया की जिस तरफ भी हो मिसाइलों को इसी सिमत में मूव किया जा सके, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो एक्रीमी सदर ने इस बात में सर हिला दिया। मार्शल ड्रेले ने अपनी जेब से सेल फोन निकाला और उसके बटन प्रेस करता हुआ साइड में हो गया, जबकि एक्रीमी सदर हॉल में लगी हुई स्क्रीनों और इन कंप्यूटरों के गिर्द घूमने लगा जिस पर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट काम कर रहे थे। आधे घंटे के बाद मार्शल ड्रेले दोबारा एक्रीमी सदर के पास आ गया। मैंने अहकाम दे दिए हैं जनाब, 1 घंटे में एक्रीमिया की तमाम रियासतों के मेन मिसाइल स्टेशनों पर प्रेशर मिसाइल नस्ब कर दिए जाएंगे जिनसे हम एक्रीमिया की किसी भी रियासत में आने वाले तूफान को रोक सकते हैं या उसका रुख किसी और बर्रे आजम की तरफ मोड़ सकते हैं, मार्शल ड्रेले ने कहा। गुड शो, क्या आपको यकीन है कि अब डेथ स्टोन और उसके तूफान से एक्रीमिया को कोई खतरा नहीं है, एक्रीमी सदर ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। यस सर, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि हम 7 ममालिक से फायर किए जाने वाले मिसाइलों से किस हद तक डेथ स्टोन को तोड़ सकते हैं। अगर इन मिसाइलों से डेथ स्टोन रेजा रेजा हो गया तो ठीक है, वरना एक्रीमिया के साथ साथ अर्थ बदस्तूर खतरे में रहेगी, मार्शल ड्रेले ने कहा। ठीक है, हमसे जो हो सकता है हम वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, एक्रीमी सदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। यस सर, मार्शल ड्रेले ने कहा। डेथ स्टोन को खला में कितने फासले पर टारगेट किया जाएगा, एक्रीमी सदर ने पूछा। हम डेथ स्टोन को खला में 1000 किलोमीटर के फासले पर तबाह करने की कोशिश करेंगे। डेथ स्टोन अगर इस रेंज से नीचे आया तो इससे पैदा होने वाला तूफान हम किसी भी सूरत में अर्थ की तरफ आने से नहीं रोक सकेंगे, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो क्या डेथ स्टोन को 1000 किलोमीटर के फासले पर तबाह करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, एक्रीमी सदर ने इस्तफ्तार किया। यस सर, हमारे तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। जैसे ही डेथ स्टोन हमारे टारगेट रेंज में आएगा हम अर्थ से 1 घंटा कबल तमाम पावर मिसाइल फायर कर देंगे जो खला में 1000 किलोमीटर दूर डेथ स्टोन को टारगेट कर लेंगे, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो एक्रीमी सदर ने इस बात में सर हिलाया। उसी लम्हे अचानक हॉल तेज सायरन की आवाजों से गूंज उठा। सायरन की आवाज सुनकर मार्शल ड्रेले बुरी तरह चौंक पड़ा। सॉरी सर, ये डेथ स्टोन के मिसाइलों के रेंज में आने का कॉशन है, अगले 1 घंटे में डेथ स्टोन मिसाइलों की मुकम्मल रेंज में होगा, इसलिए हमें अभी और इसी वक्त अर्थ से खला की तरफ मिसाइल फायर करने होंगे ताकि मिसाइल खला में ही डेथ स्टोन को तबाह कर सके, मार्शल ड्रेले ने तेज तेज बोलते हुए कहा। ओके, तुम अपना काम करो, एक्रीमी सदर ने कहा। तो मार्शल ड्रेले उसे सल्यूट करता हुआ पीछे हटता चला गया। उसने कॉलर पर लगा हुआ माइक ऑन किया और दूसरे लम्हे उसकी आवाज एक बार फिर हॉल में गूंजना शुरू हो गई। उसने 7 ममालिक से लिंक कर लिया था और उसने 7 ममालिक को मिसाइल फायर करने के अहकाम दे दिए थे। सातों ममालिक से एक साथ मिसाइल फायर करने के लिए उसने अपने रिस्ट वॉच देखते हुए शॉर्ट शॉर्ट काउंटडाउन शुरू कर दिया, जबकि मेन काउंटडाउन वॉच क्लॉक्स पर पहले से ही शुरू था। मार्शल ड्रेडे ने 10 से काउंटडाउन करना शुरू किया। इसने जैसे ही काउंटडाउन करना शुरू किया, उसी लम्हे कंप्यूटरों और दीवारों पर लगी हुई स्क्रीनों के दो हिस्से बन गए। इनमें से एक हिस्से में अब आसमान से गिरता हुआ आग का पहाड़ दिखाई दे रहा था और दूसरे हिस्से में मिसाइल स्टेशन दिखाई दे रहे थे, जहां से खला में एक साथ सैकड़ों के हिसाब से मिसाइल छोड़े जाने थे। 3, 2, 1 फायर, मार्शल ड्रेले ने काउंटडाउन पूरा करते हुए कहा, तो उसी लम्हे स्क्रीनों पर नजर आने वाले तवील मिसाइलों के नीचे आग पैदा हो गई और फिर मिसाइल रॉकेटों के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए। स्क्रीनों पर मिसाइल लॉन्चरों से निकलकर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इन तमाम मिसाइलों को सैटेलाइट सिस्टम से लिंक कर दिया गया था, जिससे स्क्रीनों पर इन्हें मुसलसल टारगेट की तरफ जाते और टारगेट को हिट करते हुए देखा जा सकता था। इक्रीमी सदर समेत अब पूरी दुनिया की नजरें इन मिसाइलों पर ही जमी हुई थी। मिसाइल लॉन्चरों से निकलते ही मिसाइलों की रफ्तार तेज होती जा रही थी और वो रॉकेटों की तरफ खला की तरफ बढ़ रहे थे। इन मिसाइलों को रेडियो कंट्रोल किया जा रहा था ताकि तमाम मिसाइलों को टारगेट पर हिट किया जा सके। सात ममालिक ने एक साथ पावर मिसाइल डेथ स्टोन की तरफ फायर किए थे और इस वक्त सैकड़ों मिसाइल बिजली किसी तेजी से खला की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। स्क्रीनों के जिस हिस्से में मिसाइल दिखाई दे रहे थे, इसके मनाजिर बार बार बदल रहे थे। इन मनाजिर में सात ममालिक से फायर किए जाने वाले मिसाइलों को दिखाया जा रहा था, जो कई सिमतों से फला में बुलंद होकर खला की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में पावर मिसाइल अर्थ की कशिश शक्ल से निकल गए। जैसे ही मिसाइल कशिश शक्ल से निकले, उनकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। सातों ममालिक अपने अपने फायर किए हुए पावर मिसाइलों को रेडियो कंट्रोल करते हुए टारगेट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में खला में चारों तरफ से धुएं की लंबी लंबी लकीरें घूमती हुई दिखाई देना शुरू हो गईं। हॉल में हर तरफ खामोशी छा गई। इन सब की नजरें स्क्रीनों पर जमी हुई थीं। यही हाल दुनिया का था। जो लोग अपनी टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे थे, वो भी दम साधे मिसाइलों और आग के पहाड़ की जानिब देख रहे थे। इस वक्त दुनिया का ऐसा आलम था कि हर इंसान के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। मिसाइल बर्फ रफ्तारी से डेथ स्टोन की जानिब बढ़े जा रहे थे और फिर वो लम्हा आ गया जिसके लिए दुनिया दुआएं मांग रही थी। मिसाइल आग के इस पहाड़ से टकराना शुरू हो गए। इन मिसाइलों के धमाकों की तो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन खला में होने वाले धमाकों ने हर तरफ आग ही आग फैला दी थी। आसमान जैसे आग की सुर्खी में छुप गया। ये आग इस कदर तेज थी कि दुनिया के हर हिस्से से आसमान की सुर्खी को देखा जा सकता था। इक्रीमी सदर और हॉल में मौजूद अफराद ने मिसाइलों को आग के पहाड़ से टकराते और फिर आग के पहाड़ को टुकड़े टुकड़े होकर खला में बिखरते देखा, तो इन सब के सूते हुए चेहरे कदरे बहाल हो गए। कंप्यूटर पर बैठे हुए अफराद बेख्तियार उठ खड़े हुए और फिर इक्रीमी सदर समेत तमाम अफराद अपनी कामयाबी पर तालियां बजाना शुरू हो गए। मिसाइलों ने सात ममालिक से मुख्तलिफ सिमतों में आग के पहाड़ को टारगेट करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। स्क्रीनों पर पहले जहां आग का पहाड़ गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वहां बड़े बड़े शोले दिखाई दे रहे थे जो तेजी से खला में फैलते जा रहे थे। मुबारक हो मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने टारगेट हिट कर दिया है। 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा डेथ स्टोन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अब इसके टुकड़ों का तूफान है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर गिर सकता है, लेकिन ये तूफान भी प्रेशर मिसाइलों के जरिए अर्थ से दूर हटा दिया जाएगा। मार्शल ड्रेले ने आगे बढ़कर इक्रीमी सदर को बाकायदा मुबारकबाद देते हुए कहा। क्या प्रेशर मिसाइल भी सात ममालिक से फायर किए जाएंगे? इक्रीमी सदर ने पूछा। यस मिस्टर प्रेसिडेंट, जिस तरह टारगेट पर सात सिमतों से पावर मिसाइल फायर किए गए थे, इसी तरह इन्हीं सात ममालिक से प्रेशर मिसाइल भी फायर किए जाएंगे ताकि तूफान को अर्थ पर आने से मजीद पीछे हटा दिया जाए, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो इक्रीमी सदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर मार्शल ड्रेले ने इन सात ममालिक को खला में प्रेशर मिसाइल फायर करने के अहकाम देने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में स्क्रीन पर पावर मिसाइलों जैसे बड़े और लंबे लंबे मिसाइल एक बार फिर खला की तरफ बढ़ते दिखाई देने लगे। ये मिसाइल पावर मिसाइलों से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार थे। खला में जाते ही इन मिसाइलों ने फटना शुरू कर दिया। इन मिसाइलों से पैदा होने वाली रेजिस्टेंस की वजह से खला में फैला हुआ तूफान हर तरफ से छटना शुरू हो गया। आग के बड़े बड़े गोले जो नीचे की तरफ आ रहे थे, वो धमाकों से उछल उछल कर खला के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना शुरू हो गए थे और फिर कुछ ही देर में खला से जैसे सुर्खी खत्म होती चली गई। खला से आग के तूफान को भी इंतहाई कामयाबी से दूर हटा दिया गया था। वर्ल्ड लीडर होने की वजह से इस कामयाबी का चेहरा एक क्रीमिया को ही जाता था, जिसने पूरी दुनिया को खौफनाक तबाही से बचा लिया था। इसीलिए एक्रीमी सदर का चेहरा फिर से मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। हॉल में मौजूद तमाम अफराद खुसूसी तौर पर एक्रीमी सदर को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे थे। एक स्क्रीनों पर अब भी खलाई मंजर दिखाई दे रहा था, जहां हर तरफ फुलझड़िया सी फूटती हुई दिखाई दे रही थी। एक्रीमिया और दीगर ममालिक की जानिब से बिला तातुल प्रेशर मिसाइल फायर किए जा रहे थे, जिससे डेथ स्टोन के जरात मजीद बिगड़ते जा रहे थे। हमने डेथ स्टोन के तूफान पर 90% काबू पा लिया है मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन इसका 10 हिस्सा पलट गया है और प्रेशर मिसाइल भी इस तूफान को रोकने में कामयाब नहीं हो रहे, बल्कि प्रेशर मिसाइलों की वजह से तूफान का कुछ हिस्सा और ज्यादा तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। ये अब कंकरियों का तूफान है, जिसे हम प्रेशर मिसाइलों से भी नहीं रोक सकते। अचानक स्क्रीन के एक हिस्से को देखकर मार्शल ड्रिले ने एक्रीमी सदर से मुखातिब होकर इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। उसके कॉलर पर लगा हुआ माइक चूंकि ऑन था, इसीलिए उसकी आवाज न सिर्फ हॉल में गूंज रही थी बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया पर भी नशर हो रही थी। ओह, इस तूफान का रुख किस सिमत में है, एक्रीमी सदर ने एक बार फिर परेशान होते हुए कहा। इस तूफान का अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। पावर और प्रेशर मिसाइलों की वजह से खला में इस कदर सुर्खी है कि नीचे आता हुआ तूफान बार बार अपना रुख बदल रहा है। अगर ये तूफान इसी तरह से अपना रुख बदलता रहा तो फिर हो सकता है कि ये तूफान अर्थ के दाएं बाएं से गुजर जाए, लेकिन इसके बावजूद खतरा है कि तूफान का कुछ हिस्सा अर्थ की कशिश शक्ल में दाखिल हो जाएगा, और तूफान का जो कुछ हिस्सा कशिश शक्ल में आएगा तब इस तूफान की शिद्दत का अंदाजा भी हो जाएगा और इसका इस बात का भी पता चल सकेगा कि वह तूफान जमीन के किस हिस्से टकरा सकता है। इससे अर्थ के किसी न किसी मुल्क की तबाही तय है, मार्शल ड्रेले ने कहा। ओह, क्या इस तबाही को रोका नहीं जा सकता, एक्रीमी सदर ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। नो मिस्टर प्रेसिडेंट, तूफान की रफ्तार बेहद तेज है। साइंसदानों और माहिरीन के ख्याल में अगर 3 से 4 मिनटों में तूफान कशिश शक्ल में दाखिल हो जाएगा, और फिर, मार्शल ड्रेले ने कहा, तो एक्रीमी सदर की नजरें एक बार फिर स्क्रीन पर जम गईं, जहां आग का एक तूफान दिखाई दे रहा था। माहिरीन इस तूफान को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहे थे। स्क्रीन पर धुंधला सा दुनिया का नक्शा फैल गया था, जो किसी ग्लोब की तरह घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। तूफान अभी चूके खला में ही था, इसीलिए एक्रीमी साइंसदान और माहिरीन फलकियात ये तय नहीं कर पा रहे थे कि तूफान किस सिमत की तरफ जा रहा है। फिर अचानक स्क्रीन पर नजर आने वाले ग्लोब स्क्रीन पर साकित हो गया। उसी लम्हे नक्शे पर बर्रेआजम अफ्रीका रेड कलर में मार्क होना शुरू हो गया। ये तूफान बर्रेआजम अफ्रीका की जानिब बढ़ रहा है, मार्शल ड्रेले ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए एक्रीमी सदर से मुखातिब होकर कहा। बर्रेआजम अफ्रीका में ये तूफान किस मुल्क की तरफ जाएगा, तूफान की शिद्दत कितनी है और इससे किस हद तक नुकसान होने का एहतमाल हो सकता है, एक्रीमी सदर ने दांतों से होंठ चबाते हुए पूछा। कशिश शक्ल में दाखिल होने के बाद तूफान की रफ्तार 500 मील फी घंटा हो जाएगी और इस तूफान में इतनी ताकत है कि ये जिस मुल्क पर गिरेगा वहाँ जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, ना वहाँ कोई जानदार जिंदा बचेगा और ना ही उस मुल्क का कोई स्ट्रक्चर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मार्शल ड्रेले ने जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे स्क्रीन पर धुंधले नजर आने वाले नक्शे पर बर्रे आजम अफ्रीका के सहराए आजम के साथ क्यों ना मार्क होना शुरू हो गए। ओह गॉड, ये तूफान तो सहराए आजम के साथ क्यों ना को मार्क कर रहा है, एक्रीमी सदर ने परेशानी के आलम में कहा। स्क्रीन पर नीचे एक बड़ी सी पट्टी बन गई थी, जिस पर अफ्रीकी मुल्क क्यूना के बारे में तफसीलात बताई जा रही थी। चूंकि डेथ स्टोन से पूरी दुनिया को खतरा लाहक हो गया था और ये भी कयास किया जा रहा था कि अगर पावर मिसाइलों से डेथ स्टोन को खला में ही तब्दील कर दिया जाएगा तो इसके जर्रात तूफानी रुख इख्तियार करके किस सिमत में जाएंगे, इसलिए क्रीमिया ने पूरी दुनिया के मुमालिक का डेटा रिकॉर्ड कर लिया था ताकि तूफान किसी भी मुल्क या किसी भी मुल्क के शहर की तरफ जाए तो इस मुल्क की आबादी और इस मुल्क की तमाम तर तफसील से दुनिया को आगाह किया जा सके। स्क्रीन पर चलने वाली पट्टी के मुताबिक बर आजम अफ्रीका का क्यों ना नामी मुल्क ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आबादी इतनी कम भी नहीं थी। इस मुल्क का रकबा 60,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था और इस मुल्क की आबादी 1,40,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। ये मुल्क चूंकि सहराए आजम के किनारे पर वाक़े था और सहराए आजम दुनिया के गर्म तरीन खित्तों में शुमार होता था, जहाँ का दर्जा हरारत 57 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता था और रात के वक्त यही दर्जा हरारत -70 सेंटीग्रेड तक आ जाता था। इसीलिए सहरा के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक की आबादियाँ ज्यादा बड़ी नहीं थी। हॉल में लगी हुई मेन स्क्रीन के एक बार फिर दो हिस्से बन गए, जिसमें स्क्रीन के एक हिस्से में सैटेलाइट के जरिए बर्रे आजम अफ्रीका के मुल्क क्यूना को दिखाया जा रहा था और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आग का तूफान नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। चूंकि पूरी दुनिया को इस तूफान का इल्म था, इसीलिए क्यूना को जैसे ही खबर हुई कि तूफान सहराए आजम के साथ इस मुल्क को मार कर रहा है, तो पूरे मुल्क में खतरे के अलार्म बजा दिए गए। अब स्क्रीन पर क्यूना में इंतहाई हंगामी हालात दिखाई दे रहे थे। क्यूना के लोग अपने घरों से निकल आए थे और हर तरफ जैसे भाग दौड़ सी मच गई थी। क्यूना के लोग इंतहाई खौफजदा और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो जहाँ सींग समाए के मुस्ताक अपनी जाने बचाने के लिए भागे चले जा रहे थे, लेकिन इस तूफान से बचना अब उनके लिए नामुमकिन था। फिर अचानक क्यूना पर कयामत सी टूट पड़ी, अचानक जैसे क्यूना पर आसमान टूट पड़ा था। हर तरफ से आग के गोले बरसना शुरू हो गए थे, जो जमीन पर खौफनाक धमाकों के साथ आग ही आग फैलाते दिखाई दे रहे थे। शहाबे साकिबों से होने वाली मुसलसल बारिश ने जैसे बर्रे आजम और क्यूना पर कयामत ढा दी थी। क्यूना की जमीन बुरी तरह से लरक रही थी और जमीन ने यूं आग उगलना शुरू कर दी थी जैसे क्यूना के नीचे छुपे हुए सैकड़ों आतिशविशां एक साथ फट पड़े हों। जमीन बुरी तरह से उधड़ती हुई दिखाई दे रही थी। आग के तूफानी झक्कड़ों से क्यूना की जमीन भी जलकर राख होती जा रही थी। ये मंजर इस कदर हौलनाक और दिलखराश था कि हॉल में मौजूद इकरीमी सदर के साथ पूरा हॉल और टीवी स्क्रीनों पर देखने वाले पूरी दुनिया के लोगों के दिल धड़कना भूल गए थे। क्यूना पर होने वाली तबाही और आग के तूफान में इंसानों को जिंदा जलते देखकर पूरी दुनिया के इंसानों पर मौत का खौफ तारी हो गया था। इस वक्त शायद ही कोई ऐसी आंख हो जो इस कदर हौलनाक और भयानक तबाही को देखकर आंसू ना बहा रही हो। इमरान इस वक्त राणा हाउस में मौजूद था। वो इस वक्त बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। इमरान को सुबह सुबह राणा हाउस में देखकर जोसेफ और जुआना बेहद खुश हो रहे थे। इमरान ने अभी उन्हें नहीं बताया था कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है। जोसेफ ने किचन में जाकर फौरन इमरान के लिए कॉफी बना ली थी और उसने कॉफी इमरान को लाकर दे दी थी। इमरान लॉन में बैठा हुआ था। इसके सामने एक छोटी सी गोल मेज थी जिसके गिर्द मजीद दो कुर्सियां रखी हुई थी। इसने जोसेफ से कॉफी ली और उसे सिप करना शुरू कर दिया। जोसेफ और जुआना उसके दाएं बाएं खड़े थे। क्या बात है मास्टर, आज तुम बेहद संजीदा और परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या कोई खास बात है, जुआना ने आखिरकार इमरान की संजीदगी की वजह पूछते हुए कहा। कुछ नहीं, वैसे ही, इमरान ने संजीदगी से कहा। कुछ तो है बॉस, कोई तो मसला है जो तुम इस कदर संजीदा हो, क्या मसला है, हमें बताओगे नहीं, जोसेफ ने कहा। नहीं, इस वक्त मैं तो क्या पूरी दुनिया पर संजीदगी और रंजीदगी का आलमतारी है, इस रंजीदा माहौल में मैं हंसी मजाक करूं ये अच्छा नहीं लग रहा, इमरान ने कहा। ओह, शायद तुम क्यूना पर आसमानी कयामत टूटने की वजह से ये सब कुछ कह रहे हो, जुआना ने कहा। हाँ, वाकई क्यूना में बेपनाह तबाही हुई है, पूरे का पूरा मुल्क नेस्तो नाबूद हो गया है, हर तरफ आग ही आग थी, इस मुल्क का शायद ही कोई जानदार जिंदा बचा हो, जोसेफ ने अफसोस ज़दा लहजे में कहा। क्यूना पर होने वाली ये तबाही मामूली नहीं थी। इस मुल्क के साथ साथ बर्रे आजम अफ्रीका के कई और ममालिक भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में इतनी तबाही नहीं हुई जितनी कि क्यूना में हुई है। मेरा तो ख्याल है कि दुनिया से क्यूना का नामो निशान तक मिट गया है, जुआना ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब सिवाय अफसोस के और क्या किया जा सकता है, जाहिर के कुदरती आफात के सामने किसी का बस कैसे चल सकता है, जोसेफ ने इसी अंदाज में कहा। इस मुल्क की तबाही ने मास्टर को भी इस कदर संजीदा कर रखा है, जुआना ने कहा और फिर इससे पहले कि इनमें से कोई मजीद बात करता, उसी लम्हे गेट से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये कौन आया है? जुआना ने चौंक कर कहा। मैंने सफदर और तनवीर को बुलाया है। जाओ गेट खोलो और उन्हें अंदर आने दो, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो तेज तेज चलता हुआ गेट की जानिब बढ़ता चला गया। उसने गेट खोला तो बाहर सफदर की कार मौजूद थी, जिसकी साइड सीट पर तनवीर बैठा हुआ था। जैसे ही जोसेफ ने गेट खोला, सफदर कार अंदर ले आया और उसने कार पोर्च में ले जाकर रोक दी। कार रुकते ही तनवीर और सफदर कार से बाहर आ गए। इमरान चूंकि लॉन में ही बैठा हुआ था, इसलिए दोनों उसकी तरफ बढ़ते चले गए। हम आ गए हैं इमरान साहब, सफदर ने आगे बढ़ते हुए इमरान से मुखातिब होकर बड़े खुशगवार लहजे में कहा। आओ बैठो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो उसकी संजीदगी देखकर ना सिर्फ सफदर बल्कि तनवीर भी चौंक पड़ा। क्या बात है, आप बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सब खैरियत तो है, सफदर ने इमरान के सामने कुर्सी पर बैठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। तनवीर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। क्यों, क्या मैं कभी संजीदा नहीं रह सकता? और क्या ये जरूरी है कि मैं हर वक्त किसी न किसी की दुम पर पांव रखता रहूं? इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो सफदर के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ऐसी बात नहीं है, आपकी गैर मामूली और गैर मुतवक्के संजीदगी बाज़ औक़ात खलने लगती है, फिर आपकी संजीदगी से ये भी अंदाजा होने लगता है कि कोई बहुत बड़ा सानहा रोनुमा होने वाला है या रोनुमा हो चुका हो, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यूना का सानहा क्या कम है? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो क्यूना में होने वाली तबाही को देखकर अश्कबार ना हुआ हो? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस तबाही का हाल देखकर तो बच्चा बच्चा बिलक उठा होगा और इसने बोतल का दूध भी पीना छोड़ दिया होगा। क्यों तनवीर, इमरान ने पहले इंतहाई संजीदगी से कहा और फिर तनवीर की तरफ चेहरा मोड़कर उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे वो इसके सामने दूध पीता बच्चा हो। मुझे क्या मालूम मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। मेरी नजर में तो तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो। और तुम क्या समझते हो कि दुनिया में सिर्फ बच्चे ही दूध पीते हैं? मैं भी पीता हूँ, तुम भी पीते हो, सफदर भी पीता है और ये दोनों देव भी पीते हैं। यकीन ना आए तो पूछ लो इनसे। हाँ ये अलग बात है कि हम सब सिर्फ दूध नहीं पीते, दूध में चीनी पत्ती या फिर कॉफी मिला लेते हैं, लेकिन बहरहाल चाय या कॉफी में जब तक दूध न डाला जाए चाय का रंग निखरता नहीं है और ना ही कॉफी का, इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा। क्या तुमने हमें यहाँ ये फजूल बातें करने के लिए बुलाया है, तनवीर ने मुंह बना के कहा। हाँ इमरान साहब, आपने मुझे कॉल करके फौरन राणा हाउस पहुँचने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि मैं अपने साथ तनवीर को भी लेता हूँ। किस लिए बुलाया था आपने हमें यहाँ? हमसे कोई खास काम था, सफदर ने इमरान का मूड बदलते देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ एक बहुत जरूरी काम था, इतना जरूरी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, इमरान ने इस बार अपने मखसूस लहजे में कहा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसे बताते हुए आप शर्मा रहे हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर कोई उल्टी सीधी हाँकना चाहता होगा, तनवीर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। नहीं नहीं इस बार मैं संजीदा हूँ, मैंने एक फैसला किया है और मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे अपने किए हुए फैसले पर अमल कर लेना ही चाहिए, इमरान ने एक बार फिर संजीदा होते हुए कहा। कौन सा फैसला, तनवीर ने चौंक कर पूछा। वो इमरान ने एक बार फिर शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप आज जिस कदर शर्मा क्यों रहे हैं, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारा नाम सफदर या जंग बहादुर है और तुम में अकल नाम की कोई चीज ही नहीं। ठीक है तुम दोनों अगर कूड़ मगज हो और मेरी बातें समझ नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है और चूंकि अपनी शादी के बारे में तुम दोनों से मैं खुद यानी दूल्हा बात कर रहा है, इसीलिए मुझे बात करते करते थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही है, इमरान ने कहा। और उसकी बात सुनकर ना सिर्फ सफदर और तनवीर बल्कि जोसेफ और जुआना भी बुरी तरह से उछल पड़े। आप शादी करना चाहते हैं? क्या मतलब, सफदर ने हैरान होते हुए कहा, जबकि तनवीर ने गुस्से से होंठ भींच लिए थे। वो यही समझ रहा था कि इमरान जिस अंदाज में शादी की बात कर रहा था ले देकर उसकी तान इस पर या फिर जूलिया पर ही टूटने वाली थी। लो शादी शादी होती है, इसका भी कोई मतलब होता है? अगर होता है तो तुम बता दो, मैं होने वाला दूल्हा हूँ, मुझे तो इसका मतलब का पता नहीं है, इमरान ने बड़े मासूमाना लहजे में कहा। आपने कहा है कि आपने शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन किससे? मेरा मतलब है आपने किससे शादी करने का फैसला किया है, सफदर ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। कौन है वो औरत जिससे तुम शादी करना चाहते हो? तनवीर ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। वो इमरान एक बार फिर हकलाते हुए कहा, जैसे वो इन दोनों के सामने उस औरत का नाम लेते हुए हिचकिचा रहा हो। क्या वो लगा रखी है? सीधी तरह बताओ, किस लड़की से शादी करना चाहते हो तुम? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। लड़की नहीं, वो औरत है, 4 बच्चों की माँ है, इमरान ने और ज्यादा शर्माते हुए कहा। तो सफदर के साथ साथ तनवीर के चेहरे के भी तासुरात तब्दील बदलते चले गए। तनवीर का ख्याल था कि इमरान आदत के मुताबिक उसे जिज करने के लिए जूलिया का ही नाम लेगा, मगर उसे खिलाफ तवक्का किसी औरत के बारे में बात करते देखकर वो हैरान रह गया था और उसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए थे। 4 बच्चों की माँ? क्या मतलब? क्या आप 4 बच्चों की माँ से शादी करने का सोच रहे हैं? सफदर ने आंखें फाड़ते हुए कहा। सोच नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे एक औरत पसंद आ गई है, उसकी उम्र अभी 50 साल की नहीं हुई है, शायद वो दो तीन माह तक हो जाएगी। उसके 4 बच्चे हैं जो माशाल्लाह जवान हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के। लड़कियों की उसने शादी कर दी है, अलबत्ता उसके दोनों बेटों की शादी अभी नहीं हुई है और दोनों एक क्रीमिया में होते हैं जहां वो अपना जाति बिजनेस करते हैं। इनके घर में दौलत की फरावानी है। औरत बेचारी चूंकि अकेली रहती है, इसलिए उसने अपनी दूसरी शादी के लिए अखबार में एक इश्तहार दिया था कि उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद हजरात, चाहे वो कुंवारे हों या शादीशुदा या फिर बाल बच्चेदार ही क्यों ना हो, अगर वो इस अकेली औरत का सहारा बनने के लिए मुखलिस हों तो फौरन इससे राब्ता करें। वो चट मंगनी और पट ब्याह की कायल है। इसने इश्तहार में ये भी कहा है कि जो शख्स मुखलिस हो उससे शादी करे और उससे अपनी जायदाद का वो आधा हिस्सा भी देगी। मैंने जब उसकी जायदाद के बारे में मालूमात हासिल की तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पाकिस्तान में शायद ही इस औरत के मद्दे मुकाबिल कोई ऐसी हो कि जिसके पास इतनी दौलत हो सकती हो। इसका बैंक बैलेंस $10 अरब से भी ज्यादा है। दारुल हुकूमत में उसके कई कमर्शियल और रिहायशी प्लाजे हैं, बेशुमार बुटीक्स की वो मालिका है। इसके अलावा इसके पास एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं, जो इसके 10 केनाल पर फैले हुए बंगले में कतारों की शक्ल में खड़ी रहती हैं। और ये ही नहीं, मुझे ये भी पता चला है कि इस औरत का अपना जाती तैयारा भी है और समंदर में भी उसके कई शिप्स चलते हैं। अब तुम खुद सोचो, ऐसी नेक शरीफ मालदार औरत अगर किसी की बीवी बन जाए तो उसका शोहर किस कदर खुश नसीब होगा। बैठे बिठाए वो करोड़ों अरबों की जायदाद का मालिक बन जाएगा। उसके शाहाना ठाट बाट होंगे, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होगी, ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई गम होगा, ना ही कोई परेशानी, ना किसी से कोई गिला होगा और ना कोई शिकवा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, अपना बैंक बैलेंस होगा जिससे मैं पूरी दुनिया की सैर कर सकता हूँ, जो चाहे खरीद सकता हूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होगा, इमरान ने जैसे ख्वाबीदा लहजे में कहा। सफदर और तनवीर हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे, जिसके चेहरे पर उन्हें वाकई बेहद संजीदगी और मतानत नजर आ रही थी। तो क्या तुम दौलत के लिए अब किसी बूढ़ी औरत से शादी करने का ख्वाब देख रहे हो? तनवीर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। ख्वाब? हाँ, तुम ठीक ही तो कह रहे हो प्यारे। जब तक मेरी उस हसीना उमर रसीदा से शादी नहीं हो जाती और मैं उसकी आधी जायदाद का हिस्सेदार नहीं बन जाता, उस वक्त तक जाहिर है मैं ऐसे सुहाने ख्वाब ही देख सकता हूँ, इमरान ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। क्या आप वाकई संजीदा हैं? सफदर ने इमरान की जानिब गौर से देखते हुए कहा। संजीदा भी हूँ और रंजीदा भी। संजीदा इसलिए कि अब मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर करके थक गया हूँ। तुम लोगों के साथ फॉरेन मिशन पर जा जाकर मैं अपनी जान हलकान करता रहता हूँ। कभी मैं सीने पर गोलियां खाता हूँ, कभी पीठ पर, कभी मैं किसी मुजरिम के कब्जे में आ जाता हूँ तो वो जुल्म और तशद्दुद कर करके मेरा हशर कर देते हैं। हर बार मौत मुझे छू कर गुजर जाती है। सारे मिशन का बोझ मेरे नातवा कंधों पर होता है और मैं अपनी जान जोखिम में डालकर जब वापस आता हूँ तो दानिश मंजिल में बैठा हुआ चूहा मुझे एक छोटा सा चेक थमा देता है, जिस पर हिंद से तो होते हैं लेकिन इतने कम कि इससे मैं बमुश्किल अपने बावर्ची की आधी तनख्वाह ही दे पाता हूँ। इस कदर झमेलों के बाद भी मेरे हाथ आता ही क्या है और मैं सालों से अपने ही बावर्ची का मकरूज होता चला जा रहा हूँ। जाहिर है जब मैं अपने बावर्ची का ही कर्ज नहीं उतार सकता तो फिर मैं अपनी शादी के लिए कब और क्या जमा करूंगा। इसलिए मैंने सीक्रेट सर्विस को हमेशा के लिए खैर बात कहने और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने का फैसला कर लिया है। मेरी किस्मत में अगर उम्र रसीदा औरत ही लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उम्र रसीदा औरत से शायद मुझे सुख चैन ना मिल सके, लेकिन उसकी दौलत पर तो मैं जिंदगी भर ऐश कर सकता हूँ। अगर बूढ़ी औरत वाकई अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर देती है तो मैं एक बावर्ची सुलेमान तो क्या इस जैसे कई बावर्ची रख सकता हूँ, और फिर मुझे खाम मखा तुम्हारे साथ फॉरेन मिशन पर जाने के लिए अपनी जान भी हथेली पर नहीं रखनी पड़ेगी। खुदा की पनाह, जब भी मैं किसी मिशन पर जाता हूँ तो मैं बस यही दुआ करता रहता हूँ कि इस बार मैं मिशन मुकम्मल कर लूँ। इसके बाद चूहा चाहे मुझे सोने में ही क्यों ना तोल दे, मैं दोबारा किसी मिशन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर हालात ऐसे हो जाते हैं और सुलेमान अपना कर्ज वसूल करने के लिए मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देता है, तो फिर मुझे मजबूरन चूहे की बात माननी पड़ जाती है और मैं एक बार फिर कुछ पाने की जस्तुजू में तुम्हारे साथ मौत के समंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मगर वापसी पर बराए नाम चेक देख कर चूहा फिर मुझे हाथ दिखा जाता है और मैं बस उसका दिया हुआ चेक ही देखता रह जाता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरा अपना बैंक बैलेंस होगा, मेरी जेबों में पाकिस्तान के तमाम बैंकों की चेक बुक्स होंगी और मैं जिस चेक पर दस्तखत करूंगा उसे वसूल करने वाले मुझे झुक झुक कर कॉर्निश बजा लाएंगे। वाह, क्या शानदार जिंदगी होगी मेरी। बस दुआ करो कि वो औरत मेरा रिश्ता मंजूर कर ले, फिर तुम जब भी सीक्रेट सर्विस छोड़ने का सोचो तो सीधा मेरे पास चले आना, मैं तुम सबको अपने पास रख लूंगा। किसी को अपना मुशीर बनाकर, किसी को सेक्रेटरी और किसी को मैं कैशियर की जॉब दे दूंगा, और अगर तनवीर भी मेरे पास आएगा तो मैं भी उसे कोई कोई ना कोई जॉब दे ही दूंगा, चाहे वो किसी नायब कासिद की ही जॉब क्यों ना हो। रही बात रंजीदा होने की, तो वो मैं इसलिए हूँ कि मुझे डर है कि कहीं ग्रीन क्वीन मेरा रिश्ता ही ना ठुकरा दे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे और मुझे हमेशा उसी चूहे की गुलामी करनी पड़ेगी। इमरान ने इसी तरह मुसलसल रुके बगैर बोलते हुए कहा। इसकी बात सुनकर तनवीर का चेहरा एक बार फिर बिगड़ना शुरू हो गया। ग्रीन क्वीन? क्या वो क्वीन है? सफदर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, इसका कारोबार चूंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी सबसे ज्यादा दौलत ग्रीन लैंड में है, इसीलिए वो खुद को ग्रीन क्वीन कहती है, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। इसकी रिहाइश गाह कहाँ है? सफदर ने पूछा। ये मत पूछो कि इसकी रिहाइश गाह कहाँ है, ये पूछो कि इसकी रिहाइश गाहें कहाँ कहाँ और किस किस मुल्क में नहीं है, इमरान ने कहा। मेरा मतलब है कि ग्रीन क्वीन की नेशनलिटी कहाँ की है, क्या वो पाकिस्तान की रहने वाली है या ग्रीनलैंड की? सफदर ने कहा। बताया तो है कि वो पाकिस्तानी है, ग्रीनलैंड और दूसरे बेशुमार ममालिक में उसके बिजनेस पॉइंट्स हैं, इमरान ने कहा। क्या तुमने उसे प्रपोज किया है? तनवीर ने इमरान की जानिब गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैंने चंद दिन पहले उसे अपना मुकम्मल बायोडेटा और अपनी कई हालिया तस्वीर इरसाल की थी, इमरान ने कहा। फिर कोई जवाब आया? सफदर ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है, इमरान ने कहा। तो वो दोनों एक बार फिर चौंक पड़े। जोसेफ और जवाना खामोशी से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने इमरान की बातों में कोई मदाखलत नहीं की थी। क्या मतलब, इस मामले से हमारा क्या ताल्लुक है? सफदर ने हैरान होकर कहा। अभी तक तो इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ग्रीन क्वीन ने मुझे खास तौर पर अपने दौलत कदे में तलब किया है और वो मुझसे अकेले में मिलना चाहती है, और उसने कहा है कि मैं अपने साथ दो मोतबर अफराद को भी लेता आऊँ जो मेरे अजीज हों, ताकि उसके सामने हम मुस्तकबिल के बारे में डिस्कस कर सकें। अब मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा मोतबर और अजीज कौन हो सकता है? तुम मेरे अजीज बन जाओ, तुम दोनों साथ होगे तो वापस आकर तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये तो बता सकोगे कि मेरी चॉइस गलत नहीं है और मैंने जो किया है अच्छे वक्तों के लिए ही किया है, इमरान ने कहा। तो आप अपने साथ हमें अपना अजीज बनाकर ले जाना चाहते हैं? सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और नहीं तो क्या, मैं वहाँ अपने बड़ दिखवे के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों के बड़ दिखवे के लिए नहीं, इमरान ने बूढ़ी औरतों की तरह हाथ नचा कर कहा। अगर ग्रीन क्वीन आपके अजीजों से मिलना चाहती है तो आप हमारे बजाय अपने डैडी और अपनी बी अम्मा को क्यों नहीं ले जाते? सफदर ने कहा। उन्हें साथ ले जाने से बेहतर है कि मैं अपने सर में खुद ही गोलियां मार लूं। अम्मा बी ने अपनी हम उम्र हसीना को देखा तो उन्होंने वहीं मेरे और मेरे ग्रीन क्वीन के सर पर इतनी जूतनियां मारनी शुरू कर देनी है, और डैडी, उन्होंने तो अपनी सर्विस में आज तक अपने रिवॉल्वर से एक गोली भी नहीं चलाई है। शायद उन्होंने कसम खा रखी है कि वो जब भी पहली गोली चलाएंगे उनका निशाना मैं ही बनूंगा, इमरान ने कहा। तो क्या हमारे साथ जाने से आपकी मिस, मेरा मतलब है ग्रीन क्वीन, आपका रिश्ता कबूल कर लेंगी, सफदर ने कहा। जाहिर है जब तुम प्रिंस ऑफ धम के मुशीर खास और सिक्रेटरी बन कर जाओगे और ये दोनों बॉडीगार्ड्स हमारे साथ होंगे तो ग्रीन क्वीन को भी प्रिंस ऑफ धम की हैबत देखकर पसीना आ जाएगा और वो अपनी पेशानी पर आया हुआ पसीना रोमाल से साफ करने से पहले मेरा रिश्ता कबूल कर लेगी। और ये भी मुमकिन है कि आज ही हमारा रिश्ता तय हो जाए, आज ही मंगनी हो जाए और आज ही शादी, इमरान ने कहा। ओह, तो आप ग्रीन क्वीन से मिलने के लिए प्रिंस ऑफ धम बनकर जाएंगे, सफदर ने चौंकते हुए कहा। जाहिर है ग्रीन क्वीन का रिश्ता किसी चार्मिंग प्रिंस से ही हो सकता है, किसी अरे गैर नत्थू खैरे से तो नहीं, इमरान ने कहा। तो फिर हम दोनों ही क्यों, आप तमाम मेम्बरान को बुला लें, हम सब आपके साथ चलेंगे ताकि अगर चट मंगनी और पट ब्याह होने वाला मामला हुआ तो हम सब आपकी शादी में एंजॉय तो कर सकें, सफदर ने नीम मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा। अरे अरे नहीं, मैं अभी सबको साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता, खासतौर पर जूलिया का तो मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने देने जाता, इसका कोई भरोसा नहीं कि वो शादी के वक्त मेरी होने वाली बीवी को थ्री स्टे की तरह ले ही उड़े, इमरान ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी के बाद वो तुम्हें चैन से रहने देगी, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। तो तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम संभाल लेना उसे, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। फजूल बातें मत करो, ये बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो, तनवीर ने सर झटक कर कहा। हालांकि इमरान की बात सुनकर उसकी आंखों में तेज चमक आ गई थी, उसे यूं महसूस हो रहा था कि आखिरकार इमरान ने उसके हक में और जूलिया से दस्तबरदार होने का फैसला कर ही लिया है। मेरे बर दिखावे के लिए मेरे साथ चलने की तैयारी करो और कुछ नहीं, इमरान ने कहा। ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलें, कहाँ चलना है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जैसे उसने इमरान का साथ देने का फैसला कर लिया हो। इसकी बात सुनकर तनवीर ने चौंक कर सफदर की जानिब देखा और फिर सफदर के चेहरे पर संजीदगी देखकर वो भी खामोश हो गया। गुड शो, ये हुई ना बात, मैं डर रहा था कि अगर तुम दोनों ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा, और तुम दोनों के सिवा मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम दोनों मेरा साथ ना देते तो मेरे हाथ से निसफ सदी के करीब पहुंचने वाली हसीन दोशीजा भी निकल जाती, इमरान ने खुश होते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर वो दोनों बेख्तियार हंस पड़े। जोसेफ, जुआना, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, तुम दोनों प्रिंस के बॉडीगार्ड्स हो और बॉडीगार्ड्स मखसूस यूनिफॉर्म्स में ही अच्छे लगते हैं, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने संजीदगी से कहा। जुआना ने भी जोसेफ की तकलीद में सर हिला दिया। क्या आप प्रिंस वाला लिबास पहनेंगे, सफदर ने कहा। नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त प्रिंस वाले लिबास में ही मलबूस रहूं, प्रिंस की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शाही लिबास जेबतन करे या फिर धोती कुर्ता, इमरान ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा। तो वो दोनों एक बार फिर हंस पड़े। मेरा और तनवीर का क्या किरदार होगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर मेरा सेक्रेटरी होगा और तुम मेरे जाती दोस्त, और तुम्हारा ताल्लुक भी रियासत ढम से ही है, तुम्हारा नाम अजीज है और तनवीर का नाम अजीज ही है, इमरान ने कहा। फिर तो मेरा ये रूप मेरे लिए बायस फखर होगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। शाही खानदान से ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी, इसलिए ज्यादा दांत मत निकालो, प्रिंस के बॉडीगार्ड्स को अगर गुस्सा आ गया तो ये तुम्हारी बत्ती से निकाल कर रख देंगे, इमरान ने कहा। तो सफदर और तनवीर हंस पड़े। अजीजी के अलावा मेरे लिए कोई और अच्छा नाम नहीं सूझा तुम्हें, तनवीर ने खुशगवार मूड में कहा। तो मिस्टर तंबकतू रख लो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं, ये नाम तुम्हें ही मुबारक, मैं अजीजी ही ठीक हूँ, तनवीर ने फौरन कहा। तो इस बार सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं लिबास बदलने जा रहा हूँ, तुम भी ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने लिबास बदल लो, मैंने तुम दोनों के लिए भी खुसूसी तौर पर दो लिबास तैयार कराए हैं, इमरान ने सफदर और तनवीर से मुखातिब होकर कहा। हम इन्हीं लिबासों में ठीक हैं, तनवीर ने सर झटक कर कहा। नहीं, ऐसे लिबास तो मेरे मुलाजमीन के मुलाजमीन भी नहीं पहनते, तुम प्रिंस के सेक्रेटरी हो और सफदर मेरा दोस्त, इसलिए दोनों के जिस्मों पर खुसूसी लिबास होने जरूरी है, वरना ग्रीन क्वीन पर हमारा रोब और दबदबा नहीं पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। तनवीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सफदर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश करा दिया। ठीक है, अगर प्रिंस ने हमारे लिए खुसूसी लिबास तैयार कराए हैं तो हमें इन लिबासों को पहनने में क्या एतराज है, आओ पहन लेते हैं हम इनके मंगवाए हुए खसूसी लिबास, सफदर ने कहा तो तनवीर एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और फिर वो दोनों रिहायशी हिस्से में मौजूद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ते चले गए, जबकि इमरान एक अलग रूम की तरफ चला गया और जोसफ और जवाना अपने अपने कमरों की तरफ हो लिए। पार्ट 1 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।